आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए लोग अंदर आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए सब लोग, और बाहर जो लोग हैं उनसे विनती है वो लोग अंदर आ जाएं, कथा सुन सकें सभी लोग। बहुत स्थान है, आगे हो जाइए। कोई बाहर जाके कुछ जो लोग खड़े हैं उनको कह सकते हैं, वो लोग अंदर आ जाएं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे केवल यही विनती है कि एकदम शांत रहें, मोबाइल बंद रखें, स्विच ऑफ रखें। हम लोग भगवान राम की लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं और कहीं आपको आपके कोई फ़ोन बुला नहीं दें और कृपया बातें नहीं करेंगे। भगवान राम की कथा के पहले प्रणाम करेंगे सब लोग, कृपया दोहराएं।
रामं रामानुजं सीता भरतं भरता जं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः।
हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी, भगवान के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनके परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। आफ्टर द लेक्चर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए कल कथा चल रही थी, वैसे आज कथा करना चाहते हैं भगवान राम के जन्म के विषय में, लेकिन एक विषय कल रह गया था तो उसको पूरा करना चाहेंगे। कोई किसी को याद है कल क्या विषय रह गया था? हाँ हाँ जी, राम को पीछे से मारा, सॉरी वाली को पीछे से मारा, यस। तो केवल उसको कह के फिर राम की जन्म, आज तो जन्म दिवस है, जन्म की कथा होनी चाहिए। तो वाली के वध की कथा हम लोग कल सुन चुके हैं, इसलिए उसको विस्तार से नहीं कहेंगे। वाली ने प्रश्न कर लिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो आपके आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा था। और ये प्रश्न हम सब के मन में कभी कभी आता है, जो इस लीला को सुनते हैं तो मन में प्रश्न आता है। और जो लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं वे अपने मन से कोई ना कोई उत्तर देते हैं। हमें ध्यान है हमने भी ये प्रश्न किया था शुरुआत में कई वर्ष पहले, तो किसी ने हमें उत्तर दिया कि वाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी, इसीलिए भगवान सामने नहीं आए। हमने कहा ये तो कोई बात नहीं है, वो तो भगवान है, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, ये जो आधी शक्ति चली जाना ये तो हमारे जैसे साधारण लोगों के ऊपर फर्क होगा, भगवान के ऊपर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने कहा अरे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा ये तो सही है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी अपने जीवन में, भले वो भगवान है ये सही है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई उनको प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से बंधे नहीं हैं, इसको जान लीजिए। जैसे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी जेल में जाते हैं मुआयना करने के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री अगर जेल में गए हैं तो उनके ऊपर जेल के नियम लागू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें समय पर बाहर आना पड़ेगा, उनको लाइन में खड़े होकर खाना पड़ेगा, उनको अंदर नहीं, कोई नियम नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो जेल के नियमों के परे हैं। इसी तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से बंधे नहीं हैं, उनके ऊपर कोई नैतिकता, कोई अन्य चीजों की बातें हम थोप नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उनको सारे कार्य मर्यादा में करने चाहिए थे। भले वो भगवान हैं, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, और इसी मर्यादा के कारण उन्होंने अपने ऊपर कष्ट लिए। सीता देवी को उन्होंने वन में भेज दिया, श्री राम को बड़ा दुख हुआ था। लोग कहते हैं कि सीता देवी को जब वो गर्भवती थी वन में भेज दिया, ये कैसी मर्यादा है, ये कौन सी मर्यादा है, उन्होंने अपने पति की मर्यादा का कर्तव्य का पालन नहीं किया। भले राजा के कर्तव्य का किया हो, लेकिन पति की मर्यादा का नहीं किया, तो फिर कैसे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं। श्री रामचंद्र फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पति की मर्यादा का भी पालन किया। जब उन्होंने वन में भेज दिया सीता देवी को, उसके बाद श्री रामचंद्र कभी भी मखमल के गद्दे पर सोए नहीं, उन्होंने कभी भी बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन स्वीकार नहीं किए। उनका भाव था कि सीता वहाँ वन में है, और अगर वो वैसे रह रही है तो फिर वो भी नीचे जमीन पर सोया करते थे, जैसे सीता वन में सो रही होगी। इसलिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अर्थात उन्होंने अपने ऊपर कष्ट लिए, दुखों को सहन किया, और ये समझाया कि जब हम बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने दुख को सहन करना चाहिए, अपने सुख को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक नेता के पद पर है या किसी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी ले रहा है, किसी जगह का प्रमुख है, उसको कभी भी अपने सुख को त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। सीता देवी को वन में भेजने पर रामचंद्र जी का गुणगान होना चाहिए कि ये राम है, कि उन्होंने जनता के लिए अपने ऊपर इतने कष्ट सहे, उन्होंने कभी दोषारोपण नहीं किया कि मेरे सुख का क्या, उन्होंने कभी यह प्रश्न प्रजा से नहीं पूछा, आप अपने सुख की बात करते हैं, आप नियमों की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने मेरे सुख के विषय में सोचा? श्री रामचंद्र जी ने कभी यह प्रश्न नहीं किया, ये मर्यादा है उनकी। इसीलिए उनका गुणगान होना चाहिए, उनके त्याग का, उनके वैराग्य का गुणगान होना चाहिए। और अगर श्री रामचंद्र जी ने गलत किया होता तो जिस समय यज्ञ हो रहा था, ऋषि मुनियों ने कहा पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा, रामचंद्र जी आप और एक विवाह कीजिए, सीता तो है नहीं, और उस समय कोई जानते नहीं थे वो कहाँ हैं, वन में छोड़ दिया गया है उन्हें, तो रामचंद्र जी या तो सीता को वापस लाइए या फिर आप दूसरा विवाह कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा सीता को वापस लाना ये मेरे अधिकार में नहीं है, और दूसरा विवाह करना ये असंभव है। तो अगर श्री राम ने मर्यादा तोड़ी पति की, तो क्यों उन्होंने दूसरा विवाह नहीं कर लिया, जबकि सारे ऋषि मुनि उनको कह रहे थे, उनके कुलगुरु उनको कह रहे थे आवश्यक है, यज्ञ पूरा नहीं होगा, विवाह करो। नहीं किया। रामचंद्र जी ने कहा ढूंढिए शास्त्रों में, कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, ये संभव नहीं कि मैं विवाह कर लूं। फिर सारे शास्त्र ढूंढे गए और फिर निकला कि ठीक है, अगर पत्नी नहीं है तो सोने की पत्नी की मूर्ति बनाई जाए और उसको बिठाया जाए। रामचंद्र जी ने कहा ये ठीक है, इसकी अनुमति है, एक सोने की सीता बनाई जाए और वो मेरे साथ में बैठेगी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगा, ये पति की मर्यादा है। तो उनका गुणगान करने की बजाय हम दोषारोपण करते हैं, क्योंकि ये हमारी मूर्खता, हमें चीजों को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी अपनी बुद्धि से हम चीजें देखते हैं वो हमारी भौतिक बुद्धि से दूषित होती हैं। इसीलिए हमें भगवान में दोष दिखाई देते हैं, उनके क्रियाओं में दोष दिखाई देते हैं। इसी तरह वाली का वध, तो हालांकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नियमों के परे हैं, फिर भी मर्यादा कैसे उन्होंने तोड़ी। तो वाली को भगवान श्री राम ने इसका उत्तर दिया, वाली ने बहुत कुछ कह दिया। और तब श्री राम ने कहा कि वाली तुम बहुत कह रहे हो, मेरी बहुत निंदा कर रहे हो, और तुम उत्तर पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारा वध क्यों किया, हालांकि तुमने कुछ भी नहीं किया था। तो उत्तर को सुनो। श्री रामचंद्र कहते हैं कि ये जो सारी पृथ्वी है इसका राजा भरत है। उस समय भरत राजा थे, तो राजा भरत है, और भरत के राजा होते हुए किसी भी स्थान पर अगर कोई अधर्म करता है तो मैं उसका प्रतिनिधि हूं और मुझे अधिकार है उसको दंड देने का, एक राजा के प्रतिनिधि के रूप में। और तुम ये जान लो वाली, एक पिता, एक गुरु और बड़े भाई का तीनों का समान स्थान होता है, उसी तरह पुत्र का, शिष्य का और छोटे भाई का समान स्थान होता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा, उसको जबरदस्ती उससे विवाह कर तुमने उसके साथ रह रहे हो, तुम वो भी तब जब तुम्हारा भाई जीवित है। तो ये इस तरह हुआ कि तुम अपनी पुत्र वधु के साथ ये गलत कार्य कर रहे हो, अपनी पुत्री के साथ गलत कार्य कर रहे हो, अपनी शिष्या के साथ गलत कार्य कर रहे हो, और इस अपराध का तुम्हें दंड दे रहा हूं। इस अपराध के लिए कोई हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अपराधी को किस तरह दंड देना है ये अपराधी निश्चित नहीं करता है, ये तो अपराध देने वाला निश्चित करता है। जैसे मान लीजिए पुलिस भाग रही है चोर के पीछे, तो क्या चोर ये निर्णय लेगा कि कैसे हमें मारना है, कैसे हमें पकड़ना है, या पुलिस निर्णय लेगी? चोर नहीं ले सकता। तो रामचंद्र जी कहते अपराधी हो तुम, तुमने अपराध किया भरत के प्रति, हमने दंड दिया। दूसरी बात, तुम पशु हो, तुम ही कह रहे थे ना कि मैं तो पशु हूं। वाली ने भगवान को ये कहते हुए कहा था कि मैं तो पशु हूं, वन में रहने वाला हूं, आपने कैसे मुझे मार दिया? तो तुम पशु हो, और पशु को मारने के नियम नहीं होते हैं, और पशु को तो छुपकर ही मारा जाता है, वाली पीछे से मारा जाता है वाली। और फिर उन्होंने कहा कि वाली तुम धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने अधर्म नहीं किया, अपने भाई के राज्य को छीन लिया, उसको बाहर निकाल दिया, उसको मोहताज कर दिया, उसकी पत्नी को लेकर आप उसके साथ संग कर रहे हो, आराम से महल में रह रहे हो, क्या ये अधर्म नहीं है? अगर तुम ये मानते हो अधर्म नहीं है तो फिर मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि मैंने अधर्म किया। और उस समय वाली ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, बहुत सुंदर बात भगवान से कही। जब ये भगवान कह रहे थे तो ऐसा वर्णन है अध्यात्म रामायण में कि वाली को वो अपना दर्शन दे रहे थे, हालांकि वो कह रहे थे कि तुमने ऐसे ऐसे गलत किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं तुम्हें उसे उसका राज्य दिलाऊंगा। और जब ये कह रहे थे तो भगवान के दर्शन हो रहे थे वाली को। और जब वाली ने कहा तो वाली ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं जान गया हूं आप कौन हैं, आप वही परम पुरुष भगवान हैं और आप आए हैं, मैं ये मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, ये मेरा अपराध था, इसीलिए मुझे अब कोई दुख नहीं है कि आपने मेरा वध किया या आपने मुझे मारा। वाली ने स्वीकार किया। वैसे एक स्थान पर वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी ने ये कहने के बाद वाली से कहा कि वाली, अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुमने ठीक किया, धर्म का पालन किया, तो मैं वचन देता हूं, ये तीर निकाल देता हूं, तुम जीवित रहोगे। वाली ने मना कर दिया। वाली ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने गलत किया, अधर्म किया, और इस अधर्म के चलते आपने जो दंड दिया वो सही है। मुझे दुख है कि मैंने ऐसा पाप किया। अब केवल आपसे विनती है कि आप मेरे सभी पापों को क्षमा कीजिए। और फिर वाली ने सुग्रीव की ओर देखकर कहा। सुग्रीव के हाथ जोड़कर वाली सुग्रीव से क्षमा मांग रहा है। वाली ने सुग्रीव से कहा कि मेरे गलत कार्यों को मन में नहीं रखना सुग्रीव, अब मैं जा रहा हूं, तुम अब राज्य करो, अब तुम राजा हो। और हे राजा सुग्रीव, मेरी कुछ प्रार्थनाएं हैं तुमसे। पहली चीज, मेरे प्रति मन में कोई दोष नहीं लाना। ये हो सकता है कि मोह में आकर मैंने ऐसा कार्य कर दिया, या हो सकता है विधि का विधान हो कि हम दोनों एक साथ रहकर सुखी नहीं रह सकते थे, इसलिए इसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हे सुग्रीव, प्रार्थना है मेरी कि अंगद मेरा पुत्र है, मैंने उसको बहुत प्रेम से पाला है, उसका ध्यान अपने पुत्र की तरह रखना। ये जो तारा है, वहां पर उस समय तारा भी, उनकी पत्नी आई हुई थी, बड़ी रो रही थी, तो ये जो तारा है ये बड़ी विद्वान है, ये जो कहती है बड़ी विद्वान विद्वता से कहती है, कभी इसने कोई गलत सलाह नहीं दी, इसका हमेशा ख्याल रखना। और तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात वाली ने कही कि सुग्रीव, श्री राम को दिए हुए अपने वचन को भूल नहीं जाना, उनके कार्यों को पूरा करना, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है। ये देखिए, ये वाली कह रहे हैं, मतलब जिस समय वाली अपना देह छोड़ रहा था उसका हृदय पूर्ण शुद्ध हो चुका था भगवान के तीर लगने से। वाली भगवान से प्रार्थना करते समय कहते हैं कि जब भगवान ने कहा कि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो वाली ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, आपके नाम मात्र से, केवल नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाता है, और इस समय आप मेरे समक्ष खड़े हैं, आपने मेरा वध किया है, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती, इसीलिए मैं अभी मरना चाहता हूं। नाम की महिमा को वाली ने कहा कि केवल नाम लेने से, और कई पुराणों में, कई स्थानों में नाम की महिमा को दिया गया। कई स्थानों में नाम की महिमा को दिया गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि केवल भगवान का नाम अगर कोई मजाक में ले लेता है, सांकेतम, एक संकेत करते हुए ले लेता है, कभी कभी मजाक में लेते हैं ना, हम लोग बाहर जाते हैं तो कोई कहता है अरे ये हरे कृष्णा वाले आ गए, भागवत कहता है उसका भी पाप दूर हो जाते हैं। ये नाम की महिमा। नाम अग्नि के समान है, आप जाने या अनजाने में उसमें हाथ डालिए, अग्नि जला देगी आपको। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, आप प्रेम से लीजिए, मजाक में लीजिए, अनजाने में लीजिए, आपकी रक्षा करेगा। ये भगवान श्री राम के नाम की महिमा। अन्य कई पुराणों में, नरसिंह पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन सब में भगवान के नाम की महिमा को दिया गया। स्कंद पुराण में भी भगवान की नाम की महिमा को दिया गया कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति केवल एक बार इस नाम को ले लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसका उद्धार निश्चित है। कूर्म पुराण में लिखा है कि इस कलयुग में व्यक्ति उतने पाप कर नहीं सकता जितना केवल एक बार भगवान का नाम लेने से उस सारे पाप गायब हो सकते। मतलब हमारी, कूर्म पुराण कहते हैं कलयुग में लोगों में क्षमता ही नहीं है कि वो इतने पाप करें कि एक बार नाम लेने से उनके सारे पाप दूर नहीं हो जाए। तो ऐसे कई पुराणों में भगवान के नाम की बहुत महिमा दी गई है। ऐसा भी कहा गया है कि जितने भी भय हैं भगवान का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप सबसे विनती है, रामनवमी का दिवस है आज, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस, इस पर हम ये प्रण करें कि जैसे वाली ने कहा, भगवान के नाम की महिमा को उन्होंने कहा, और भागवत में तो कई स्थानों पर कहा गया है कि कैसे भगवान अजामिल की कथा है, मृत्यु के समय केवल नाम ले लिया उसने अपने पुत्र को बुलाने के लिए, मुक्त हो गया वो। इसीलिए आज हम ये प्रण करें कि हो सकता है जीवन में मैंने अब तक बहुत कुछ कर लिया, मैं दूर रहा भगवान आपसे, ये प्रार्थना आज के दिन आप सभी कृपया भगवान को अर्पण कीजिए। अभी कुछ देर में जैसे भगवान के दर्शन हो, आप सब आरती के समय दर्शन करते हो, हृदय में ये प्रार्थना अर्पण कीजिए भगवान को, बहुत कर लिया मैंने भगवान, बहुत दूर रह लिया आपसे, बहुत प्रयास कर लिया सुख लेने का, आपके आपसे अलग रहकर सुख मिला नहीं, लेकिन अब आपसे प्रार्थना है, आपके चरणों में स्थान दीजिए, उस सुख की मैं प्राप्ति करना चाहता हूं जिसके लिए जन्म जन्म से मैं तड़प रहा हूं। आप जान लीजिए भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोग कई जन्म तक तड़पे हैं, हमने प्रार्थनाएं की, हमने तपस्या की, हमने बहुत कड़ी तपस्या की, केवल ये इसलिए कि किसी तरह हम भगवान की भक्ति कर सकें। पुराणों में कहा गया है कि अगर बहुत कोई कड़ी तपस्या भी कर लेता है, उसका भी फल भगवान के एक नाम लेने से कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कड़ी तपस्या, योग इत्यादि, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब भगवान के नाम के सामने बड़ा तुच्छ है। और इसीलिए इस कलयुग में प्रार्थना करते समय भगवान को कहिए कि आपने ये नाम दिया है, आज से मेरा प्रण है कि जो भी मार्ग मैंने सुख के अब तक लिए, सुख मिला नहीं, आज से प्रण है आपके नामों को लूंगा, आपके इस नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको जीवन के अंत तक लूंगा। आप शक्ति दीजिए भगवान कि मेरा जीवन ऐसा बीते कि जीते समय हर वक्त आपका नाम मेरे मुख पर हो, और जिस समय मेरी मृत्यु आए भगवान आपका नाम मेरे मुख पर। ये जान लीजिए कि ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है जिसमें भगवान ना हो, और ऐसी मृत्यु भी व्यर्थ है जहां भगवान का नाम ना हो। इसीलिए आज प्रण कीजिए इस नाम को सतत लेने का, और आज उन भगवान का जिनका नाम इतना शक्तिशाली है उनका प्राकट्य दिवस है, भगवान प्रकट हुए आज के दिवस पर। अगर भगवान की प्राकट्य लीला, जन्म लीला को कहने जाएं तो कई कई दिन लग जाएंगे, बहुत सुंदर लीला है। प्रयास करेंगे थोड़ा सा कहने संक्षेप में, समय काफी हुआ है। श्री रामचंद्र जी प्रकट होने वाले हैं, दशरथ बड़े दुखी थे, कोई संतान नहीं थी, यज्ञ किया, बहुत ये बड़ी विस्तार से कथा है, लेकिन हम केवल उस समय को जब भगवान प्रकट हुए उस समय को कहना चाहते हैं। रानियां जो थी गर्भवती हो गई, यज्ञ के बाद संतान होने वाली है, और जितनी भी रानियां हैं उनका तेज बहुत बढ़ गया, उनके मुख पर प्रसन्नता आ गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। बहुत तीव्र, बहुत तेज उनके चेहरे पर, क्योंकि भगवान उनके गर्भ में आए हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से भगवान गर्भ में प्रकट हो गए उस दिन से सारे आनंद ही आनंद हो गए। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए थे श्री कृष्ण, कंस ने देखा देवकी को, देवकी उस समय अपने 6 पुत्रों की मृत्यु को देख चुकी थी जन्म होते ही। आप सोचिए एक माँ के लिए बच्चे का जन्म हुआ है, कितना दुखदायी दृश्य होता है कि कंस आके उसके पांव पकड़कर ऐसे पटक देता है। 6 पुत्रों को जिसने मरते हुए देखा, जिसका पति बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो देवकी प्रसन्न थी, चेहरे पर तेज प्रसन्नता। और कंस ने देखा, और कंस ने देखते ही कहा, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ गया है, नहीं तो देवकी की प्रसन्नता का कोई कारण नहीं हो सकता, देवकी के तेज का कोई कारण नहीं हो सकता। और इसी तरह सारी रानियां, तीनों रानियां महाराज दशरथ की बड़ी प्रसन्न है, उनका तेज बढ़ गया है क्योंकि भगवान गर्भ में आए हैं। और फिर अब आज का दिन आया। वैसे कई स्थानों में कहा गया है, विशेष करके पद्म पुराण में लिखा है कि ये जो दशरथ और कौशल्या हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी, भगवान से वरदान प्राप्त किया और वही दशरथ और कौशल्या बने, वही वसुदेव देवकी बने। और वही ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि आगे चलकर कल्कि अवतार जब होगा उनके भी माता पिता बनेंगे, ये पद्म पुराण कहता है। तो भगवान सारी व्यवस्था करके आते हैं, इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म साधारण नहीं है अर्जुन। जो व्यक्ति इसको साधारण समझता है, जैसे हमारा जन्म हुआ, एक बच्चा जन्म लेता है, खून से लथपथ उसको साफ किया जाता है, रोता है, भगवान का जन्म दिव्य है, वो प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान के जन्म के समय कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान खून से लथपथ प्रकट हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता, अपनी भगवत्ता दर्शाने के लिए। तो अब वो दिन आ गया जिस दिन भगवान को प्रकट होना है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। रामनवमी, नवमी तिथि, मधु मास पुनीता, मधु मास था। वैसे भगवान 12 महीने माँ के गर्भ में रहे, ऐसा वर्णन है। 6 ऋतु अर्थात दो दो महीने की एक ऋतु होती हैं, तो 12 महीने माँ के गर्भ में रहे और अब आज के दिवस पर प्रकट होने वाले। नवमी तिथि है, मधुमास पुनीता पुण्य महीना है, शुक्ल पक्ष है और अभिजीत मुहूर्त है। भगवान हर समय जब श्री कृष्ण आए अभिजीत मुहूर्त में प्रकट होते हैं, उनका बहुत प्रिय है अभिजीत हरि प्रीता। तो भगवान प्रकट हुए और उस समय क्या स्थिति थी, कौन सा समय था, जो ग्रहों की स्थिति क्या हुई। जोग लगन ग्रह बार स्थिति सकल भय अनुकूल। जितने भी ग्रह हैं, जितनी तिथियां हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, सब अनुकूल हो गए उस समय पर। क्यों? सुप्रीम बॉस आ रहे हैं। आप लोग देखते हैं ना, जो नेवी में काम करते हैं, अगर वो बॉस आ रहे हैं तो सारे लाइन में खड़े रहना पड़ता है सबको सैल्यूट मारने के लिए। तो जितने भी जोग लगन ग्रह बार तिथि, सब लाइन में खड़े हो गए, भगवान आने वाले हैं। और कौन सा समय था भगवान प्रकट हुए? दोपहर का समय। दिवस मध्य अति शीत न घामा, मध्य दिवस में भगवान प्रकट हुए। अति शीत न घामा, न बहुत गर्मी थी न बहुत ठंडी थी, बहुत सुंदर वातावरण। और ऐसे समय में रामनवमी, आज का दिवस, दशरथ महाराज 60,000 वर्षों से इंतजार कर रहे थे एक पुत्र के लिए। उन्होंने विवाह किया पहले कौशल्या से, कौशल्या गर्भवती हुई, दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अब संतान होगी, पुत्र होगी अब मैं। और क्यों पुत्र की कामना थी दशरथ महाराज को? पुत्र की कामना इसलिए थी क्योंकि वो सोच रहे थे कि राजा के रूप में मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है, और मेरा कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं एक योग्य राजा जनता को नहीं दूंगा। केवल इस कारण से वो पुत्र की कामना कर रहे थे। लेकिन कौशल्या के पहले पुत्री हुई शांता। दशरथ महाराज प्रसन्न तो हुए लेकिन फिर भी पुत्र चाहते थे। और दूसरी ओर एक राजा थे रोमपाद, जिनकी बड़ी इच्छा थी मेरी पुत्री हो, उनके कोई पुत्री नहीं थी। तो उन्होंने दशरथ महाराज से प्रार्थना की, आपकी पुत्री है, आप मुझे दे दीजिए, गोद दे दीजिए। दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, आप गोद ले लीजिए। देखिए कि ये भौतिक जगत है, दशरथ महाराज को पुत्र चाहिए, पुत्री हो गई, वो सुखी नहीं है। रोमपाद महाराज को पुत्री चाहिए, पुत्री नहीं है उनको, वो सुखी नहीं। इस जगत में कोई सुखी नहीं है, जो चीजें हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और चाहिए। तो पुत्र हुआ नहीं, 60,000 वर्ष बाद क्या आप सोच सकते हैं दशरथ महाराज के हृदय में क्या आनंद होगा? 60,000 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग तो अब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम में से कोई भी 60,000 वर्ष जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमारी तो बहुत छोटी उम्र हो गई है। अभी कलयुग में यही कहा गया, आगे चलकर तो 20 साल। हम लोग को बड़ा आश्चर्य होगा ना सुनकर, लेकिन अगर सोचिए दशरथ महाराज ने यह सुना होता कि कलयुग में लोग केवल 70-80 साल जिएंगे, तो वो हंसते, ऐसे कैसे हो सकता है, है ना? 60,000 साल तो मैं जी रहा हूं, आप बोल रहे हो केवल 60-70 साल में कोई मर जाएगा। अरे 60-70 साल में तो शायद उस समय दूध के दांत नहीं गिरते होंगे बच्चों के, है ना? यही होगा आगे कलयुग में, 20 साल की उम्र होगी, 20 साल के पहले व्यक्ति बड़ा हो चुका होगा, विवाह कर चुका होगा, संतान हो चुकी होगी, और 20 साल में तो फिर मर जाएगा। अभी हमें सुनकर हंस रहे हैं, ऐसे कैसे, अभी तो 20 साल में लड़का खाने खेलने की उम्र होती है उसकी, नहीं ये होगा। तो 60,000 वर्ष से जो इंतजार कर रहे थे, अब पुत्र होने वाला, तो अब उनके आनंद की क्या सीमा होगी आप सोचिए। तो अब वो समय आया, दोपहर का समय, रामनवमी का समय, भगवान प्रकट होने वाले हैं। सबसे पहले कौशल्या के सामने प्रकट हुए, बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं कौशल्या के सामने। भगवान साधारण जन्म नहीं लेते हैं, चतुर्भुज रूप उन्होंने दर्शाया केवल कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए कि कौशल्या तुमने पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी अब उसका फल देने में आ गया हूं। भगवान कभी भूलते नहीं हैं, इस बात को याद रखिए। आज हम थोड़ी सी उनकी तपस्या करते हैं, आज आप लोग केवल रामनवमी के दिन थोड़ा से यहां आ गए हैं, आपने अभिषेक देखा, कीर्तन किया, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान भूलेंगे नहीं इसको। हो सकता है अगले जन्म में आप भूल जाएं, और हो सकता है नहीं, निश्चित है आप भूल जाएंगे। अगले जन्म में थोड़ी याद रहेगा आपको कि कारोबार में मैं पिछले जन्म में गया था, चलो अभी भी जाता हूं। नेक्स्ट ईयर याद नहीं रहेगा, देखिए हमें अगले साल याद नहीं रहेगा कि पिछले बार गए, हम लोग याद दिलाएंगे आपको, चिंता मत। ये सही है, कुछ याद नहीं रहता है। हम आपको आप पूछे कि आज से ठीक एक हफ्ता पहले इस समय आप क्या कर रहे थे, आपको सोचना पड़ेगा, महीना भर पहले क्या कर रहे थे, आप बोलेंगे क्या बात पूछ रहे हैं आप, कुछ और थोड़ा अच्छा पूछिए। लेकिन भगवान को याद रहता, भगवान भूलते नहीं। हम लोग तो शिशुपाल की तरह हैं, शिशुपाल को भगवान ने वचन दे दिया 100 अपराध एक समय में तुम्हारे माफ करूंगा, याद रखना। शिशुपाल बचपन से उनके प्रति अपराध करता था और काउंट करता था, गिनता था, भगवान को अपशब्द कहता था और गिनता था, 97, 98, 99, उसके बाद चुप हो जाता था, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन राजसूय यज्ञ में जब उसने भगवान की निंदा शुरू करी, उस समय वो भूल गया गिनती करना, क्योंकि इतना क्रोध में था, निंदा करे जा रहा था, वो भूल गया। लेकिन भगवान भूले नहीं, भगवान गिन रहे थे। सारे लोग सोच रहे हैं, भीम सोच रहे हैं सब, कि क्या कर रहे हैं कृष्ण, क्यों खड़े हुए हैं। कृष्ण आराम से सुन रहे, बोलते जाओ। तो 97, 98, 99, भगवान ने चेतावनी भी दे दी, शिशुपाल मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, कुछ सोच लो कितना हो गया। शिशुपाल ने कहा तुमको जो करना है कर लो, क्या कर सकते हो, ग्वाले हो तुम, इत्यादि इत्यादि। 100 पार हुआ, चक्र निकाला भगवान ने, सबके सामने शिशुपाल का सर धड़ से अलग। तो भगवान भूलते नहीं हैं, हमारी भक्ति को कैसे भूल सकते हैं, जब वो इतनी छोटी सी बात शिशुपाल को कही गई नहीं भूल सकते। तो भगवान उनको स्मरण दिलाने के लिए प्रकट हुए, कौशल्या ने दर्शन किए, बहुत सुंदर वर्णन है। भय प्रकट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी।
कौशल्या देख रही है भगवान को और कैसे रूप को देख रही है, मुनि मनहारी। बड़े बड़े मुनियों का मन हर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान को वो दर्शन कर रही है। ऐसे भगवान का वो दर्शन कर रही है जब श्री कृष्ण दंडकारण्य में घूम रहे थे वन में, तो बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो उनको देखते थे तो उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इसीलिए कई ऋषियों ने प्रार्थना की भगवान से, हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, हम आपके साथ रासलीला करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी तो मैं राम के रूप में मर्यादा पालन कर रहा हूं, लेकिन हाँ आगे कृष्ण के रूप में आऊंगा और तब दुनिया को दिखाऊंगा कि भगवत्ता क्या है, और उस समय आप गोपियां बनना। तो भगवान की गोपियों में एक प्रकार की गोपियां थी जिनको ऋषिचारी गोपी कहते हैं। ये वो गोपियां थी जो पूर्व जन्म में भगवान के साथ दंडकारण्य वन में ऋषि मुनियों के रूप में रहे थे। तो मुनि मनहारी अब वो देख रही हैं भगवान के बहुत सुंदर रूप को, और उस समय बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कौशल्या ने अर्पण की। कौशल्या कहती हैं, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरः परमात्मा च्युतोऽनन्त पुराणस्त्वं पुरुषोत्तमा। हे देव, देव देव नमस्तेस्तु। कौशल्या प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप देवों के देव हैं, आपको प्रणाम है, आप ही भगवान, आप ही परमात्मा, आप ही अनंत हैं, आप ही पुराणं पुरुषम हैं और आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सृष्टि का पालन करते हैं, आप ही नाश कर देते हैं। भगवान मेरी एक प्रार्थना है, आप इस भक्त की प्रार्थना को सुनकर आपने मेरे गर्भ में प्रवेश किया, अब एक प्रार्थना और है, अपना ये रूप छुपा लीजिए। आप ऐसे रहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। बताइए भगवान चतुर्भुज रूप में रहते और तो कौशल्या कहती मेरे से जन्म हुआ तो कोई विश्वास करता, कहते अरे नहीं नहीं ये तो अपने आप प्रकट हुए। तो कौशल्या ने कहा अपना ये रूप छुपा लीजिए, छोटे बालक के रूप में आइए ताकि मेरे हृदय में ममता का भाव जागृत हो, अभी तो मैं दास के भाव में हूं, मेरे हृदय में ममता का भाव चाहिए, इसीलिए अपने इस रूप को छुपा लीजिए। भगवान ने कौशल्या पर अपनी कृपा दिखलाई और भगवान बहुत छोटे से बालक के रूप में कौशल्या की गोद में आ गए। तो कौशल्या को कितना आनंद आया होगा जब भगवान प्रकट हुए। वैसे जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने के कई कारण हैं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, या फिर साधुओं को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं? ये सारे बाहरी कारण हैं भगवान के प्रकट होने के, लेकिन भगवान का प्रकट होने का एक मूल कारण है। भगवान इस जगत में क्यों आते हैं, एक मूल कारण, और वो क्या है? हम सब जीवों को अपने धाम वापस ले जाने के। ये एक ही प्रमुख कारण है भगवान के इस जगत में आने का, नहीं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी लीला भी वो वहां बड़े आराम से कर रहे हैं, यहां आते हैं लीला दर्शाते हैं जिसको देखकर। इसीलिए भागवत में कहा गया है भगवान क्यों आते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान आते हैं, लीला करते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, क्यों? या श्रुत्वा, ये जो मैं लीलाएं कर रहा हूं इनको सुनकर आगे तत्परो भवेत, आगे आने वाली कई पीढ़ियां, आगे हजारों लाखों वर्षों तक, क्योंकि आज जो हम रामायण सुन रहे हैं ये कितने साल पहले हुआ? श्री रामचंद्र जी आज से करीब 9 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, कोई अभी अभी नहीं हुए हैं, 9 लाख साल पहले, और आज भी हम उनका गुणगान कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आते हैं, यत श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिनको सुनकर व्यक्ति मुक्त हो जाए, ये भगवान की कथा है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान के संग में रहें। भगवान श्री राम, राम का अर्थ क्या है? रा और म, ये दो शब्दों से बनता है। रा कहा जाता है आकर्षण के लिए, हाँ, और म मही को कहते हैं, मही अर्थात पृथ्वी या ये भौतिक जगत। तो मही से म आता है, रति से र आता है। रति अर्थात आकर्षण, मही अर्थात ये भौतिक जगत। तो राम नाम का अगर अर्थ लिया जाए तो ये होता है कि वो राम जो इस सारे जगत को आकर्षित करते हैं, उन्हें राम कहते हैं, या सारे जगत में एक ही आकर्षण का केंद्र है और वो है राम। जैसे किसी ने गाया है ना एक भजन में, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, तो उनको राम कहा जाता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ राम शब्द का, राम शब्द के वैसे बहुत अर्थ हैं। राम मतलब जो रमण करते हैं, राम मतलब जो आनंद लेते हैं, राम मतलब जो आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन एक अर्थ हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कहकर अब इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। और उसके बाद बच्चे आपको नाम रामायण सुनाएंगे, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो ये अर्थ को आप सबको ध्यान रखना चाहिए राम नाम का। तो जब राम नाम लें तो एक अर्थ हो रति और मही से राम आता है, अर्थात इस जगत में अगर कोई आकर्षण की चीज है तो केवल राम। और दूसरा एक अर्थ र आता है रावण से और म आता है मरणम से, अर्थात भगवान के इस जगत में आने का उद्देश्य था रावणस्य मरणम। आचार्य समझाते कि रावणस्य मरणम इति राम, रावण को मारने वाले उनको राम कहते हैं। तो इसीलिए राम शब्द को जब हम सुने तो हमें सोचना चाहिए कि मेरे हृदय में जो रावण बैठा है, आशा करते हैं आप सबके हृदय में है या नहीं है, किसी के हृदय में नहीं है ऐसे कोई है यहाँ? क्या पूछें हम कि हृदय में है या नहीं है, क्या पूछें? है, सबके हृदय में है, पक्का आप लोग सब विश्वास करते हैं आपके हृदय में रावण है? अगर आप सब विश्वास करते तो जोर से हरि बोल कहिए। इतना धीरे बोला हमें लगा आगे वालों के हैं पीछे नहीं है, एक बार और थोड़ा जोर से बोलिए। ये सभी भगवान को भी विश्वास हो गया। तो रावण, राम शब्द का अर्थ है कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र रावणस्य मरणम, तो रा रावण से लिया गया, म मरणम से लिया गया, जिस तरह भगवान श्री राम रावण का वध करने आए थे, उसी तरह अगर हम अपने जीवन में इस राम नाम को ग्रहण कर लें केवल, तो जैसे उन्होंने रावण का वध किया, हमारे हृदय में बैठे हुए रावण को भी वो बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और हमारे हृदय का रावण, एक रावण था उस समय जिसने सारे ब्रह्मांड में उत्पात मचाया था, और एक रावण है हमारे हृदय में जिसने हमारे जीवन में उत्पात मचाया हुआ है, और जिसके कारण हम कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। उस रावण को मारने की जरूरत है, और वो रावण है वो भावना, वो चेतना, वो इच्छा जो हमें भगवान से दूर ले जाए। जैसे सीता देवी को रावण दूर ले गया भगवान से, हमारे हृदय से अगर हमें वो बाहर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है हमारी चेतना को, हमारी इच्छाओं को, तो वो रावण है। इसलिए ऐसी हर इच्छा जो हमें भगवान से दूर ले जाए वो रावण है, और ऐसे रावण को मारने के लिए भगवान के नाम की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज समय थोड़ा कम है भगवान राम की कथा को कहने का, अगले साल, इस वर्ष की कथा तो यहीं अब समाप्त हो गई वाली के वध के साथ, तो अगले वर्ष प्रारंभ करेंगे कि कैसे भगवान राम 4 महीने चतुर्मास के रहते हैं गुफा के अंदर, और फिर कैसे सुग्रीव मदद करते हैं, कैसे सीता की खोज होती है, ये अगले वर्ष की कथा का विषय होगा। तो आप सबसे विनती है कि अगले वर्ष तक इस राम नाम को सतत अपने मुख पर रखें, अगले वर्ष ही क्यों, जीवन भर इस नाम को लें, ताकि ये नाम हमें मुक्त कर सके। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी किड्स आर रेडी, कौन सा